हूँ।
यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 नवंबर 1994 को सायं 6:45 पर काठमांडू नेपाल में हुआ। राम राम राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। सच्चिदानन्द भगवान् श्री राम को कृष्ण को सिंह महापुरुषों को सज्जनों को सादर अभिवादन कर उस बातें कहता हूं। मनुष्य के मन में एक ऐसा भाव रहता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकता हूं। मनुष्य जन्म यद्यपि मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। उसके लिए भी ये मन में हताश होता है कि मैं परमात्मा को प्राप्त कैसे कर सकता हूं। ये बड़ी एक बाधा है, अपने को अयोग्य समझकर और हताश हो जाता है। इसमें एक बात मेरे को महापुरुषों से मिली है, वो बात कहता हूं। जैसे माँ के गोद में बालक कैसा ही क्यों न हो वो जा सकता है। वो अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो मैला हो शुद्ध हो कुचेला हो कैसा ही हो माँ के गोद का अधिकारी है। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति के अधिकारी सब है। ये ग्रंथों में बात कम मिलती है, मेरे को संतों से मिली है, महात्माओं से मिली है। कैसा ही कौन हो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप अपने आप को अयोग्य समझकर हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये खास बात है। गीता में आया है, अब चेत सुदुराचार हो भजते माम अनन्य भाग। दुराचार सुदुराचार अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाग से मेरा भजन करता है तो कहते साधु रे बस मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए कि सम्यक विभिषित हो ही सा। अब चेत सुदुराचार अभी वो चेत अभ्य क्या कह रहे हैं कि वो चलता नहीं इधर जाता नहीं है। अगर वो जाना चाहे यदि वो जाना चाहे तो सुदुराचार दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट। अगर भगवान का भजन करता है भगवान की तरफ जाता है तो उसको साधु मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए कि उसने निश्चय बड़ा अच्छा कर लिया है। हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये खास विचार उसके मन में हो जाए तो परमात्मा की तरफ चलने में कोई बाधा नहीं है। हमारे दुष्कर्म है पाप है जिसके कारण हम अयोग्य हैं। आप जरा सोचें क्या मनुष्य के किए हुए कर्म में भी दुष्कर्म नीचे कर्म दुष्ट कर्म पाप कर्म कर्मों में भी नीचे कर्म क्या वे भगवान के बीच में बाधा दे सकते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधा दे रहे, भगवान क्या सबल हुए फिर? हमारे किए वो दुष्कर्म भी भगवान की प्राप्ति में आग लगा दे तो फिर बड़ी बड़े आश्चर्य की बात, भगवान क्या हुए? क्या भगवान इतने कमजोर है जो हमारे नीचे कर्मों से रुक जाएंगे? हमारे बड़े बड़े पुण्य कर्म हो उनसे भी कोई भगवान में फर्क नहीं पड़ता तो नीचे कर्मों से भी रुक जाएंगे? तो बात क्या है, भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा भजन करे। अनन्य भाव का तात्पर्य तैल धारावत निरंतर भगवान का चिंतन हो, ये बात नहीं है। वर्षों से सत्संग भजन ध्यान करने वाले सज्जन भाई बहन मन को तत्परता से नहीं लगा सकते तो दुराचारी से दुराचारी वो तेल धारा और चिंतन कैसे कर सकता है? अनन्य भाग का अर्थ क्या है? न अन्य भजति, एक भगवान की ही प्राप्ति हमें करना है। मनुष्य के पाप दुर्गुण दुराचार दुष्टता ये इतने बाधक नहीं है, बाधक है अन्य आश्रय। जैसे पतिव्रता होती है, पति के सिवाय और कहीं उसका मन नहीं जाता, ऐसे भगवान के सिवाय उद्देश्य नहीं है, ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, किसी का भी महत्व भगवान के समान नहीं है, ये खास बात है। उसको साधु मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए? तो कहते हैं सम्यक व्यवस्थित हो ही साथ, उसने निश्चय बहुत बढ़िया कर लिया है, अच्छा कर लिया है, उत्तम कर लिया है कि मेरे को भगवत प्राप्ति ही करना है, मेरे इधर ही चलना है, ऐसा निश्चय कर लिया है, इस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसको साधु ही मान लेना चाहिए। ये जो विषय है साधु रे व समन्तव्य, साधु ही मानना चाहिए। साधु मंतव्य दे साधु रे व समन्तव्य, साधु ही मानना चाहिए। ये मानना चाहिए, इसमें एक बड़ा तत्व भरा हुआ है। अभी जो सुदुराचार है, दुराचारी है और भगवान का भजन करता है तो साधु नहीं है, दुराचार है, दुराचार करने वाला है। भगवान कहते हैं उस साधु रे हो मंत्र, मानो उसको साधु, मान लो उसको। यदि महाराज आप जब दुराचार कहते हैं तो उसको साधु कैसे मान ले? कहते हैं सम्यक व्यवस्थित हो ही सह, उसने निश्चय अच्छा कर लिया है। सज्जनों ये निश्चय प्रति प्रबल शक्ति है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कारण क्या है कि मूल में परमात्मा का ही अंश है ये, ममैव अंशो जीवलोके, भगवान का साक्षात अंश है तो भगवान के चरणों में जाने का पूरा अधिकारी है। ये अन्य जगह मन लगता है, धन संग्रह कर ले, भोग भोग ले, ये दो बात खास बाधक है। भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिशीत साहब व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो नभिधीयते, भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, ऐश्वर्य पदार्थों का इकट्ठा करना, संग्रह करना, रुपये बनाना, मकान बनाना, ऐश्वर्य संपत्ति को संग्रह करना, इसमें जिनकी आसक्ति है और ऐश्वर्य में ऐसे ही भोगों में आसक्ति है, सुख भोगना है, सुख की आसक्ति और संग्रह की आसक्ति, ये दो मन में कामना है, सुख भोगने की और संग्रह करने की आसक्ति है, ये बाधक है। दुराचार इतना बाधक नहीं है। अपना जो विचार है भगवान की तरफ ये अनन्य होना चाहिए। केवल भगवान की तरफ हो, रहती न प्रभुचित चूक किए की, करत सुरत सेवा रहिए की, रहते न प्रभुचित चूक किए की, प्रभु को चूक की हुई मन गलती की हुई पाप की हुई याद नहीं रहती, करत सुरत सेवा रहिए की, हृदय की बात को भगवान याद करते हैं। हृदय जिसका ऐसा हो गया केवल भगवान की तरफ ही चले, भीतर से भाव अनन्य भाव हो गया है तो अनन्य भाव जो भगवान की तरफ ही चलना है केवल, ये भाव उसका होना चाहिए। जैसे पतिव्रत एक रहने, एक आसुरु, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक आसुरु, एक ही आश्रय, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है अनन्य भाव से। तो ये जो अनन्य भाव है ये भगवान को प्राप्त करने के लिए खास बात है। भाइयों बहनों, खूब ध्यान दें आप इस बात पर, दृढ़ता से दस जाए कि हमें भगवत प्राप्ति ही करना है। करे क्यों? भगवत प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म मिला है। ये जो मनुष्य का शरीर है, वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, इस शरीर का प्रयोजन केवल परमात्मा की प्राप्ति करना ही है। उद्देश्य यही है पहले से ही। जिन जीवों को भगवान अपनी प्राप्ति का अधिकारी मानते हैं, उनको ही मानव शरीर देते हैं। भगवान की परीक्षा गलत नहीं है। क्या ध्यान दें इस बात पर, भगवान ने जिन जीवों को मनुष्य बनाया है वे परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। क्यों भगवान ने भूल कर दी? ये भोगियों ने नहीं है, मनुष्यों ने है, ये भोगियों ने नहीं है, ये कर्मियों ने है, ऐसे साधन होनी है। साधन धाम मुक्त घर द्वारा, साधनों का ये घर है और मुक्ति का दरवाजा है। केवल हम मुक्ति के द्वार पर आ गए हैं और मुक्ति जितनी चीजें वो साधन धाम है। कृपा कर आप ध्यान दे मेरी बात की तरफ। आपके जो सुख है दुख है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, लाभ है हानि है, रोग है निरोगता है रोगीपन है, ये सब साधन सामग्री है। इस बात पर विशेष ध्यान दें। आपका रोग है वो भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, आपकी निरोगता है वो भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, आपकी धनवत्ता है वो भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, आपकी दरिद्रता है वो भी भगवान की प्राप्ति का साधन है, बीमारी है और स्वस्थता ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इन दोनों में जो दुखी ज्यादा है वो परमात्मा की प्राप्ति का पहले अधिकारी है। माँ के कई बच्चे होते हैं पर अयोग्य होता है, अंग भंग होता है, अपाहिज होता है, आरक्षित होता है, उस पर माँ की कृपा विशेष होती है। योग्य पर इतने नहीं, योग्य भी अपना ही लड़का है, अपना ही प्यारा बच्चा है, परंतु अयोग्य का ध्यान विशेष होता है माता का। तो अनंत माताओं में जो प्रेम स्नेह है वो भगवान के किसी छोटे से अंश का एक टुकड़ा है। अपार दयालु, दया सागर, सागर कहने में भी संकोच होता है संतों को कि सागर सीमा वाला होता है, बड़ा होने पर भी सीमा है। भगवान की कृपा असीम है, अपार है। हरि अनंत, हरि कृपा अनंत, भगवान लीला अनंत, अवतार अनंत, तो गुण अनंत होंगे। एक साधारण आदमी मनुष्य जो कि माप तोल में आता है उसके भी भावों का जल्दी अंत नहीं आता। जो भगवान अनंत है, अनंत स्वरूप है, अनंत नाम है, सब तरह से अनंत है, क्या उनकी कृपा सीमा वाली है? सीमा वाले प्राणी की भाव शक्ति, कृपा शक्ति उनकी वो अपार होती है, विद्या आदि अपार होती है। भगवान तो सब तरह से अपार है, अनंत है, असीम है, तो अपार शक्ति है उनमें, अपार कृपा है। तीन विशेषण भगवान के वो याद रखने के हैं। भाई बहनों से प्रार्थना है, भगवान परम कृपालु है, कृपा सागर है, कृपा के समुद्र कह दो, कृपा वो क्या कहें, कृपा के आकाश है, कृपा का ब्रह्मांड है, कृपा के सब है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु कीर्ति, प्रभु मूर्ति कृपा मई है। जैसे सोने से बनी हुई मूर्ति स्वर्णमय होती है, ऐसे भगवान का स्वरूप कृपामय है, कृपा का ही पुंज है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो किसी पर कृपा करे किसी पर न करे ये वहाँ है नहीं, वो कभी कृपा करे कभी न करे ऐसा नहीं है, कहीं कृपा करे कहीं न करे ऐसा नहीं है, सर्वत्र कृपा समान रूप से सबके ऊपर, सब सब पर मोरी बराबरी दाया, भगवान के देव मेरी बराबर कृपा है सब पर। अब उन कृपा के सन्मुख जो हो जाता है वो ले लेता है, तो आप शुद्राचार्य पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट, ये नाम क्यों लिया? भगवान को दुराचार अच्छा नहीं लगता, भगवान से विरुद्ध चलता है और भगवान मना करते हैं वो काम करते हैं, शास्त्र है वेद है पुराण संत महात्मा जिन कर्मों का निषेध करते हैं उन कर्मों को करने वाला प्यारा नहीं होता, परंतु ऐसा ही दुराचारी हो, परंतु केवल बात हो जाएगा मैं तो भगवान को ही प्राप्त करूंगा परमात्मा की तरफ ही चलूंगा, ऐसा विचार पक्का हो जाता है तो भगवान ने वो याद नहीं रहती। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत स्वरत सोवार एक ही, चूक की हुई याद भगवान को रहती नहीं। भगवान का देह वो कैमरा ऐसा है कि उसमें उसके दुराचार छपते नहीं है। सज्जन आदमी है गुणों की तरफ देखे अवगुणों की तरफ नहीं देखते। अब भगवान सज्जनों की शिरोमणि, उनसे बढ़कर कोई सज्जन हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, चारों बातें पहले कोई उनसे बड़ा बढ़कर हुआ नहीं था, अब कोई है नहीं, अगर ही कोई कृपालु होगा नहीं और हो सकता संभव नहीं, ऐसे प्रभु मूर्ति कृपामयी अत्यंत कृपा है। कृपालु होते हुए भी अगर हमारी हमारा दशा को न जानते हो तो भगवान कृपा करे न करे तो वे सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ शिरोमणि है, संपूर्ण बातों को जानते हैं, कण कण की बात जानते हैं। मनुष्य अपने नहीं जानता दूसरे क्या जानेगा, अपना भी पूरा पता नहीं मैं कैसा हूँ। अब भगवान सबके पूर्ण ज्ञाता है, उसमें ज्ञान की किंचित मात्र भी कमी नहीं है। तो भगवान परम दयालु है और परम सर्वज्ञ है। कहते सर्वज्ञ सब जान लिया और दयालु भी है, पर सामर्थ्य न हो तो सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त, भगवान करने में न करने में उलफेर करने में सर्वथा समर्थ है। ये तीन विशेषण याद रखें, सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है और परम दयालु है। एक गुण होता है दयालु तो वो भी करता है अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति नहीं पूरी नहीं है, यहाँ दया भी पूरी है शक्ति भी पूरी है और जानता ना हो तो वो सर्वज्ञ पूरे हैं। पर हमें निराश क्यों होना चाहिए, भगवान इतने समर्थ हैं, तो भगवान की तरफ चलने के लिए एक पक्का विचार कर रहे हैं। किस बात पर कर रहे हैं कि भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है, यही तनु कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल सांसारिक भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना इसके लिए नहीं दिया है, इसके निर्वाह के लिए पहले प्रबंध कर दिया है। आप हम बहन भाई माँ के जन्म लेते हैं तो जन्म से पहले माँ के दूध तैयार हो जाता है, क्या बच्चे में योग्यता है वो कमा कर खा सकता है, क्या दूध पैदा कर सकता है? भगवान की शक्ति पहले से दूध पैदा कर देती है, माँ के तरह में दूध पैदा हो जाता है, बच्चा जन्म पीछे लेता है दूध तैयार पहले हो जाता है, क्योंकि वो परम दयालु है। इस जनों से मैंने सुना है कि हनुमान भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, क्योंकि दूध सप्लाई करना है सबको दूध पहुंचाना है तो क्षीर सागर में रहते हैं, एक सज्जन की उक्ति है। तो सबको दूध पहुंचाते हैं, मानो वो जन्मता है तो उसके लिए सब तैयारी कर देते हैं भगवान पहले से, प्रारब्ध पहले रचा पीछे से रचा शरीर, शरीर में तस्य विपा को जात्यायुर होगा। योग दर्शन में महाराज कहते हैं तीन बात होती है, जीव जन्म लेता है तो जन्म एक तो एक आयु और एक भोग, सुख दुख कैसा भोगेगा कैसा होगा और जन्म कैसा हो जाएगा, जन्म के बाद में आयु कितनी होगी, ये पंचेदानी से जनते गर्भस्थ से देना शरीर में आता है माँ के पेट में तब से ये सब हो जाती है बात, पहले हो जाती है पीछे पेट में आता है। तो ये कर्म का फल पहले बार जाते हैं, तो जन्म हुआ और आयु हुई और उसमें सुख दुख की परिस्थिति हुई, उस परिस्थिति में सुख और दुख दोनों बात आती है, ये दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति की साधना की सामग्री है। ये बात मेरे को संतों से मिली है, हरे जगह मिलती नहीं है, संत महापुरुषों को मिला है कि सुख भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, जैसे सुख साधन है सुख सामग्री साधन है वैसे दुख की परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, क्यों परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला, जो परिस्थिति आती वो परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। दुख में क्या करे, कि दुख में परमात्मा की कृपा समझे, सुख में भगवान की दया समझे, एक दया और कृपा यद्यपि पर्यायवाचक शब्द है, एक ही अर्थ कहने वाले हैं, परंतु सुख सामग्री है वो भगवान की दया है और दुखदायी परिस्थिति है वो भगवान की कृपा है। कृपा होती है कृपा सामर्थ्य धातु से बनता है, वो समर्थ बनाता है, दुखों में प्राणी समर्थ बनता है, दुखों में सुख में निर्बल बनता है, सुख में पुराने पुण्य तो खर्च होते हैं और अगाड़ी भोगी आलसी होता है तो मजबूत नहीं बनता है, या दुख में पुराने पाप नष्ट होते हैं और दुख में वो श्रेष्ठ बनता है। आप समाज में देख लें, जिसके माता पिता और पिता मानो बाप दादा सब मौजूद रहे और वो 20-25 वर्षों का हो जाए और एक के 5-7-10 वर्षों की अवस्था में माता पिता सब मर गए, दादा वाले कोई है ही नहीं, वो 25 वर्ष का होगा तो होशियार कौन सा होगा, योग्य कौन सा बनेगा, जिसके माता पिता नहीं है वो दुख पाकर दुख में मजबूत बन जाता है, योग्य बन जाता है, धैर्यवान बन जाता है, दुखों के सहने में शक्ति आ जाती है, और पिता पिता माँ के लाड़ प्यार में पला हुआ उतनी शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो सुखदायी परिस्थिति मनुष्य को कमजोर बनाती है और दुखदायी परिस्थिति भगवान उसको मजबूत बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है, सबल बनाती है। तो दुखदायी परिस्थिति है सबल बनाती है और पुराने पापों का नाश करती है। सुख अपने को अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, परंतु हेतु उस दुख में है, तो वो सुख क्या काम कर जिससे हम लोग कमजोर बनावर हमारे पुण्यों का नाश कर दें। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, इनसे पूछा जाए कि आपका पुण्य रहना चाहिए कि पाप रहना चाहिए, भगवान की तो पुण्य में जो सामग्री अनुकूल मिलती है उसे क्या करे, उनसे सेवा करे। ये मनुष्य शरीर प्राणियों के हित करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए है। जैसे जेल में जितने प्राणी होते हैं वहाँ जेल का अवसर होता है, वो जेली जंतुओं जेली मनुष्यों के लिए होता है, जेली उस अवसर के लिए नहीं होते। जैसे वो जेली होता है वो जेल में आने वाले जीवों के लिए होता है, ऐसे ही ये मनुष्य शरीर है ये सबके हित के लिए, सबकी सेवा के लिए है, सब इसके लिए नहीं है। आज ऐसी धारणा बहुतों की हो गई है कि मनुष्य के लिए सब है, नहीं, सबके लिए मनुष्य है। जो योग्य होता है वो अयोग्यों के पालन करने के लिए होता है, अयोग्यों का नाश करने वाला नहीं होता है। इस वास्ते मनुष्य शरीर सबकी सेवा करने के लिए मिला है, मात्र प्राणियों की, भगवान की, मनुष्य की सेवा के भोगी भागी सब होते हैं, जीव जंतु होते हैं, अच्छे मंद सब होते हैं, भगवान की मनुष्य की सेवा के लिए लालायित होते हैं। दूसरे क्या कहें, भगवान खुद मनुष्य की चाहना रखते हैं, मनुष्य ऐसा है कि जो सबकी ऐसा पूर्ति करता है, भगवान की भूख को पूरी करता है, भगवान की कमी को पूरी करता है। आश्चर्य बात, भगवान की कमी होती है, भगवान है तो भाई कमी, सर्वविश्व संपन्न भगवान, उसकी कमी होती है भगवान, एक कमी है, एक भाव के भूखे हैं भगवान, भूखवान भूख कमी तो हुई, उस भाव की पूर्ति करता है मनुष्य, मनुष्य सिवाय और ताकत नहीं किसी में जो भगवान की भूख को पूरी कर सके। तो भगवान की पूर्ति कर सकता है, जगत की पूर्ति कर सकता है, देवताओं की, ऋषि मुनियों की, महात्माओं की, संतों की, प्राणियों की, राक्षसों की, भूत प्रेत पिशाचों की पूर्ति कर सकता है, समुद्र को जल दे करके पूर्ति त्रिपूर्ति कर सकता है, समुद्र तृप्यंता। मनुष्य पानी देता है समुद्रों को तृप्त करता है, क्या समुद्र में जल की कमी है? पर मनुष्य की अंजलि चाहता है समुद्र, मनुष्य का प्रेम चाहते हैं भगवान, मनुष्य का प्रेम चाहते हैं ऋषि मुनि महात्मा पुरुष देवता आदि सेवा, ये सबकी सेवा करते, इस वास्ते पंच महायज्ञ सदा रोजाना करना चाहिए, क्योंकि वे इनकी भूखे हैं। तो मनुष्य को इतना भगवान ने योग्य बनाया है कि अपनी भूख भी दूर करने के वाले मनुष्य भगवान, अपने आशा भगवान मनुष्य ही रखते हैं, क्या और किसी से आशा रखते हैं भगवान? देवताओं से, राक्षसों से, असुरों से, मनुष्यों से, प्राणियों से, केवल भगवान की आशा रखते हैं इस जीव से। तो यह जीव मनुष्य शरीर में आता है तो परमात्मा की प्राप्ति का योग्य होता है, तो परमात्मा की भूख दूर कर सकता है, इतना भगवान ने सामर्थ्य दिया है। वो शक्ति मनुष्य खुद की नहीं है, वो भी भगवान की दी हुई, वो शक्ति भी भगवान की दी हुई है, तो उसे भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे एक सज्जन कहीं बाहर गया व्यापार के लिए, काम धंधा करके दोपहर में जल पीने के लिए घर आया और बैठा है, स्त्री जल लाने के लिए गई, छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है, ऐसा छोटा सा बाल, वो एक चाबी, ताला की चाबी उठाकर पिताजी के हाथ में दे देता है। तो पिता कहते इतना बड़ा हो जा, इतना बड़ा गर्थ मेरे से बड़ा, इतना बड़ा हो जा। अब वो चाबी मिलती नहीं थी, क्या पिता की अलग चीज थी? अरे पिता की तो लाए हुए, और आंगन किसका है? पिता का है। बच्चा किसका है? पता पिता का है। सामग्री किसी सब पिता की है, परंतु वो दे देता है, उनसे खुश हो जाते हैं। ऐसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिव्रतम अर्षामि प्रियतात्मना। भगवान के तब पत्र पुष्प फल जल जो प्रेम से देता है, उस प्रेम के भूखा भोग है भगवान, भगवान प्रेम के भूखे उन वस्तु के नहीं है। क्या पत्र पुष्प जल भगवान को मिलता नहीं है? क्या कोई अलभ्य वस्तु है? परंतु प्रेम अलभ्य है, प्रेम के भूखे रहते हैं। प्रेम ऐसी एक चीज है कि जिसकी जिसकी पूर्ति होती नहीं और मिलने पर तृप्ति होती नहीं और प्रेम का अंत होता नहीं। कैसा ही बढ़िया भोजन हो, भोजन का ये तो भोजन कम हो जाएगा अथवा खाते खाते तृप्ति खा नहीं सकोगे। मैं प्रेम ऐसी चीज है, वो प्रेम पूर्ति होती ही नहीं, दिने दिने नवम दिन दिन में नए नए भगवान उसे नया नया प्रेम है। आज अनूप बने युगल छवि, आज अनूप बने नित्य प्रति प्रेम नया, तो प्रेम से तृप्ति नहीं होती, प्रेम का अंत नहीं होता। आप आ रहे न तो वस्तु नष्ट होती है, न इधर तृप्ति होती है, ऐसा परस प्रेम अनादिकाल से सदा बनता आया है। भगवान का श्री जी का प्रेम अपार असीम नित्य नया वर्धमान प्रतिक्षण वर्धमान, प्रेम के लक्षण बताए हैं, अनिर्वचनीय है और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, वो बढ़ता ही रहता है। ऐसे प्रेम के भूखे भगवान है तो भगवान की तृप्ति कर सकता है। जो अनुकूल परिस्थिति मिली है वो भगवान की दया से, उसको भगवान की दया से भगवान की आज्ञा के अनुसार सबके लिए खर्च करे, और प्रतिकूल परिस्थिति तो प्रतिकूल परिस्थिति में त्याग करे। प्रतिकूल परिस्थिति दुख कब देती है कि मन में हमारी इच्छा रही और इच्छा पूर्ति नहीं होती, इस वास्ते वो प्रतिकूल परिस्थिति बुरी लगती है, तो उस समय में त्याग करे, मन इच्छा का त्याग करे। अनुकूल में भी इच्छा का त्याग होगा, प्रतिकूल में भी इच्छा का त्याग होगा, धन संपत्ति अनुकूल परिस्थिति का त्याग होगा। अनुकूलता में त्याग करने पर उसको सुपात्र कुपात्र आदि देखना पड़ेगा, ये सुपात्र है कुपात्र है, सारे मैं प्रतिकूल में किसी को कुपात्र नहीं देखेगा, मैं क्यों देखेगा वो किसी को देखता ही नहीं, सब जगह ईश्वर रूप देखेगा सूक्ष्मता से। तो सानुकूल परिस्थितियों का उपयोग करने में बल लगता है और भावना बिगड़ती है, या प्रतिकूल परिस्थिति में भावना बिगड़ती ही नहीं। हम लोग भिक्षुक जाते हैं घरों में, तो बड़े बड़े धनी घरों में जा नहीं सकते, पहले लाठी लिए बैठ रहे थे, कहाँ जाते बाबा जी, जान नहीं सकते। गरीब घर में ठेठ पहुंच जाते हैं और उनके मन में भाव पैदा होती है, भावना कि देख कुछ दो, जिसे न जाने किस दिन दिया हुआ क्या कुछ हो जाए, तो भाव से मिलता है। तो जितना भाव गरीबों का रहता है उतनी उतने रहता है भाव। तो सद्भाव जिसके भाव होता है उसका कल्याण जल्दी होता है, दुर्भाव वाले का कल्याण जल्दी नहीं होता। तो समर्थ होते हैं उनमें उतनी भावना कम होती है, नियम नहीं है। बड़े बड़े समर्थ राजा महाराजा, बड़े धनी बड़े बलवान भी भगवान के भक्त हो गए, निर्बल भी भगवान के भक्त हो गए, परंतु हमारी परिस्थिति कमजोर है, भगवान की तरफ चलने में हम निराशा नहीं हो सकते। मेरा कहना का तात्पर्य वे धनी है वो ऐसे अभिमानी होते, ये नियम नहीं है। परंतु सामान्य रीति से देखा जाए तो गरीब होता है वो दया का पात्र होता है, उसको दुखी देखकर हरे को दया आती है, तो भगवान परम दयालु की दया आती है, तो दया के कारण से भगवान का बल मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, भगवान द्रवित हो जाते हैं दुख को देख करके। तो द्रवित हो जाते हैं तो सर्वसमर्थ परमात्मा और सर्व की परमात्मा और सर्वसमर्थ और सब पूरी कर देते हैं। इस वास्ते कभी किसी को अविद्वान देकर भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान के यहाँ सब योग्य है। योग्यता की भगवान की यहाँ जरूरत नहीं है, योग्यता की जरूरत होती है अयोग्य के लिए, बल की जरूरत होती है निर्बल के लिए, धन की जरूरत होती है निर्धन के लिए। आप बल से निर्बल पर आप अधिकार कर सकते हैं तो संपूर्ण से अधिक बलवान भगवान, अधिक धनवान भगवान, अधिक गुणवान भगवान, अधिक ऐश्वर्य संपन्न भगवान, सब तरह से अनंत अपार असीम है, उस पर आप बल से योग्यता से भजन जप कीर्तन आदि करने से अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु प्रार्थना से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नन्ना सा बच्चा माँ की गोदी में बैठा हुआ क्या अपने बल से माँ पर अधिकार कर लेगा, क्या उस पर अपना अधिकार जमा लेगा? परंतु नहीं जमा सकता, पर रो करके माँ पर अधिकार जमा लेता। रोना क्या है, निर्बलता की आखिरी दशा, आखिरी दृष्टि, कुछ न कर सकते तो रोएगा और क्या करे, कुछ नहीं कर सकता तो रोता है। रोना निर्बलता की खास पहचान, उस निर्बलता से माँ पर बल अपना अधिकार कर लेता है। रात्रि के समय बच्चा रोने लग जाए, माँ को उठना पड़ता है, दादी को उठना पड़ता है, जितने कुटुंबी है उन सबको उठना ही पड़ता है, बच्चा रो रहा है, अरे बच्चा रो रहा है, सब कहते बच्चा रो रहा है, तो रो करके उस सब पर अधिकार कर लेता है। ऐसे ही ये बच्चा रोने लग जाए भगवान का और भगवान के लिए, तो भगवान के काम धंधे सब छूट जाए, कितनी बढ़िया बात है। कमजोरी या बल मामूली बल नहीं होता है, तो अपने मन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, किसी बात की कमी लेकर के, योग्यता आदि कमी लेकर अपने निराश नहीं होना चाहिए। भगवान सब पूर्ति करने वाले, हम निराश क्यों होंगे? माँ के पास कौन सी ऐसी बढ़िया चीज है जो बच्चे से बड़ा कर बचा कर रखेगी? माँ के पास खाद्य पदार्थ है, कपड़े है, गोद है, किस लिए है? बालक और नहीं देगी तो क्या है माँ? वास्तव में बच्चे को ना दे तो माँ को मर जाना चाहिए, माँ किस काम की जो बच्चे का भी पालन ना कर सके? ऐसे भगवान निर्बल का पालन नहीं करके भगवान को भी मर जाना चाहिए, किस बात जीते हैं? हमारे लिए जीते हैं वो, और किसके लिए बताओ? क्या भगवान का बल भगवान के काम आता है? क्या माँ का दूध माँ के काम आता है? क्या माँ का बल अपने काम आता है, बच्चे का आता है? सब पर अधिकार बालक का होता है। ऐसे आप एक बालक की तरह भगवान को पुकारे, द्रवित हो जाते हैं, भगवान परवश हो जाते हैं। तो भगवान की तरफ चलने में किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। मेरा बल नहीं है, मेरे में विद्या नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, ये नहीं है, ये तो यही बल है। नहीं का बल बड़ा विचित्र बल होता है। केवल चाहना भगवान की हो, उन्मुख भगवान की सन्मुख हो, जीव मुख जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाए। हे नाथ एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्य भाव से अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य तस्याहं सुलभः पार्थ यद्यपि युक्तस्य योगिनः। गीता में सुलभ शब्द एक बार ही आता है, 700 श्लोकों में एक बार ही सुलभ आया। अनन्य चेता, अनन्य अन्य की तरफ नहीं, वो अपजे शुद्राचारो भजते माप अनन्य भाग, अनन्य चेता, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास एक भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान की तरफ दृष्टि है। अरे भाई और कुछ ना हो सके, कम से कम एक तरफ तो हो जाओ, एक भगवान की तरफ ही बस। एक नाथ आप ही हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे मेरे देव सब कुछ मेरे तो आप ही हो। राम माता रामो पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम वे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने और को नहीं जानता मेरे भगवान है। ये अनन्य भाग, अन्य का भजन न करे, और क्या कहीं का इष्ट नहीं है, और की तरफ बुद्धि नहीं है। तो एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। सज्जनों बार बार मौका नहीं मिलता है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, 84 लाख दुनिया में मनुष्य शरीर है वो दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर में भी सत्संग मिलना और दुर्लभ है। दुर्लभ मंत्र में भी दैवानुग्रह हेतु आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं, तीन चीज दुर्लभ है, मनुष्यत्वम मनुष्य में मनुष्यपणा, और मुमुक्षुत्वम अपनी मुक्ति की चाहना होना कि मेरा कल्याण हो जाए, और उसमें भी फिर महापुरुष का सत्संग। मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य बने हुए में भी मेरा कल्याण हो जाए ऐसी आशा वाले दुर्लभ, और ऐसी आशा होने पर अच्छा संग मिल जाए ये दुर्लभ। दुर्लभ त्रय में भी त्रयम दुर्लभ, ये दुर्लभ चीज है, कहते थे दुर्लभ तरम। ऐसा मौका मिल गया, अपने को मनुष्य मिला हुआ है, यदि किंचित परमात्मा की तरफ रुचि न होती तो क्यों आते यहाँ पर, तो कुछ इच्छा भी है ही, और महापुरुष का संग नहीं मिला तो इस रूप में चलते रहो, महापुरुष मिल जाएंगे कभी न कभी। एक बात याद आ गई, एक राजा थे, उसने सुना कि हंस होते हैं वो मोती चुगते हैं, और दूध और पानी रख दिया जाए तो दूध पी लेते हैं और जल छोड़ देते हैं। तो कहा भी ऐसे हंसों का दर्शन होना चाहिए। अच्छे समझदारों से पूछा कि हंसों के दर्शन कैसे हो, तो कि हंसों के दर्शन चाहते हो तो सब पक्षियों के लिए प्रबंध करो। तो राजा का कई बीड़ों में बगीचा था, उसमें प्रबंध कर दिया, दाने डालने का जड़ का जड़ के प्रबंध कर दिया, वृक्षावली थी, पक्षी आने लगे आने लगे, दूर दूर से वृक्षी आ जाए पक्षी आ जाए, वहाँ भोजन मिलता है, मन सून मिलती है, और वहाँ जल मिलता है, और सहने रहने के लिए वृक्ष है बहुत से, पक्षी आने लगे। तो पक्षियों से द्वारा पक्षियों में खबर पहुंची कि उस राजा के ऐसा प्रबंध है, सब तरह के पक्षी वहां आते हैं और सबके लिए भोजन मिलता है जल मिलता है। तो मानस सरोवर में जहाँ हंस रहते वहां पर ये बात पहुंची, उन्हें पूछा भी हमारा भोजन भी है वहाँ, तो भाई ऐसा हम जानते नहीं आपका क्या भोजन है कैसा है, तो ये जानते हैं कि सब तरह का भोजन वहाँ है पक्षियों के लिए, जल है और अन्न है और वृक्ष रहने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा प्रबंध हम भी देखें, तो वहाँ मोती रख सकते हैं जो बीधे हुए नहीं है, कोरे साबुत मोती है वो रखे, और दूध जल रखा हुआ, दूध रखा हुआ। तो हंस आए, वो लाल चोंच होती है, लाल चरण होते हैं, साक्षात सफेद रंग होता है, ऐसे कह रहे ऐसे आवे तो राजा ने कहा हमारे खबर दो। तो वो हंस आए, राजा को खबर दी, राजा ने देखा हंसों के दर्शन हो गए। तो हंसों के दर्शन करने के लिए संपूर्ण पक्षियों के लिए भोजन और अन्न जल की रहने की तैयारी करनी पड़ती है। फिर हंस भी आ जाते हैं कभी। ऐसे आप हम ये सत्संग का समारोह करते रहे, अच्छे कोई संत आ जाए, कोई कथावाचक आ जाए, कोई कीर्तन करने वाले आ जाए, उन कथा सुने कीर्तन करते रहे कि भाई वहाँ ऐसा नेपाल में काठमांडू में ऐसा प्रसंग प्रसंग है कि शुभ सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, तो दूर दूर से संत आने लग जाएंगे। आते आते कभी महापुरुष भी आ जाए, हम पहचानते नहीं, तुरंत महात्मा भी आ जाएंगे। चलो ऐसा सत्संग होता है, ऐसे चाहते तो चले। तो जैसे हंस आ गए ऐसे भगवान महात्मा भी आ जाए। तो ये जो समारोह हम करते हैं ये एक उपाय है अच्छे संतों का। तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, महापुरुष भी आ जाए कभी। अरे उन्हें दर्शना देव साधव, दर्शन मात्र से कल्याण करते हो। ये शांत संस्मरणात सूत सद्य शुद्धि वैग्रिया तुम पुनर्दर्शन स्पर्श पादशोपचासना देवी दर्शना देव साधव साधु दर्शन पातकता रही। ऐसे संत आ जाए तो ऐसा हम लगे रहे काम में करते रहे तो ये उपाय है। जो सत्संग करना, अच्छा आयोजन करना, पंडितों को संतों को महात्माओं को लाना बुलाना सत्संग करना, ऐसे करते रहे तो एक खबर पहुंचती है ये संत महात्मा बिना पत्र के बिना कागज के, कागज है सब जगह फैलते हैं, सब जगह जाते हैं, बात करते हैं तो भी आ जाते हैं। एक माई की कथा सुनी है हमने। एक संत थे, माई के वहां रहे तो महाराज जाने लगे कि फिर दर्शन कब देंगे। कहते माता जी बिना लिखा हुआ पत्र आएगा फिर तब आ जाएंगे। बिना लिखा पत्र क्या होता है? वो देने लगे, सत्संग करने लगे और सब लोग आते हैं, सब संतों की महात्माओं की बड़ी सेवा करती है, सत्संग करती है, बहुत से लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं। वो समारोह होता है तो वहां पहुंची जहां संत थे वहां कि हम जगह ऐसी माई है वो सत्संग में लोगों को लगती है बड़ी अच्छी है। तो संत कहे चलो भाई अब तो बिना लिखे वो कागज आ गया, समाचार आ गए, संत आ गए। एक सज्जन थे तो साधन करते थे, मन में विचार आया कि भाई अब क्या करें कैसे करें। साधक होता है उसके उलझन आती है, साधन नहीं करता तो सुनते रहते चल देते हैं कोई परवाह नहीं, पर साधन करते हैं तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? सगुण का करें, निर्गुण का करें, साकार का ध्यान निराकार का ध्यान करें, किस समय में करें, कौन सा मंत्र पढ़े, कैसे किस विधि से करें, ऐसी मन में शंका होती है। तो उनकी ऐसी शंका हो गई तो एक गृहस्थ संत थे। संत गृहस्थों में होते हैं, भाइयों में भी होते हैं, बहनों में होते हैं, मीरा भाई आदि कितने महात्मा पुरुष हो गए। तो ऐसे पुरुषों में, बहनों माताओं में और हरेक ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंत्य अर्जन हरेक में संत हुए, अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए उनमें। तो वे गृहस्थ संत थे, अपने घोड़े पर चढ़कर जा रहे थे। तो जहाँ वो मार्ग दो होते हैं तो वो इधर जाना चाहता है, घोड़ा हट जाता है, इधर जाता नहीं पीछे दौड़ता है, फिर जाता नहीं छोड़ता है। तो देखा कि इसकी मर्जी पर रखो, जिधर जाकर क्या जाता तो वो इधर इस मार्ग में चला गया। कहते ऐसे घूम कर चल जाए कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं, ये भी मार्ग ही वहां का ही। घोड़ा चलते चलते ये घर के अगर जा खड़ा है, गांव में घर के अगर खड़ा रह गया। महात्मा उतरे तो उस सज्जन था भी कोई आया है, गृहस्थ का खास काम अतिथि सत्कार, ब्रह्मचारी का काम है अध्ययन करना, गुरु आज्ञा पालन, कृष्ण का काम है अतिथि सत्कार, वानप्रस्थ धर्म है तपस्या करना और सन्यासी धर्म पर ब्रह्मचिंतन करना, एक खास धर्म है। तो ऐसे अतिथि समझ करके वो गया है भाव भक्त की, चलो बना भोजन करो, ये अन्न चले दे रहा है ना, कृष्ण का खास धर्म है। षड़े देवी सब भिक्षु होते हैं, ब्रह्मचारी यथेष्ट हुए विद्यार्थी गुरु पोषदा अद्भुत क्षीण वृत्ति से षड़े थे भिक्षु का स्मृता, इनको आनंद देने का बड़ा पुण्य होता है। एक ब्रह्मचारी एक सन्यासी जो पास में कुछ नहीं रखते, एक विद्यार्थी एक गुरु सेवक, एक रास्ते चलते हुआ एक क्षण वृद्धि जिसका कुछ नहीं रहा, सब लुट गया सब खत्म हो गया, ये छह भिक्षु होते। तो उसने देखा भाई आए कोई अतिथि है तो उसका आभगत हो गया, लाकर बैठाए फिर भोजन कराया और पूछा तो नाम सुन रखा था क्योंकि ऐसे एक संत है गृहस्थाश्रम ही बड़े भाई महात्मा है, उनके हम सत्संग करी अपनी बात रखी कि महाराज मेरे को तो ऐसी ऐसी बातें पूछ नहीं रहे, कहते तो पूछो। संत बड़े खुश हो गए, जैसे व्यापारी होता है और ग्राहक आ जाता है तो खुश होते हैं, ऐसे संत महात्मा असली बात पूछने से खुश होते हैं। हृदय की बात पूछे, एक शंका है वो बात पूछे, उलझन है वो बात पूछे, तो उसमें वो बहुत खुश होते हैं। संत तो इस वास्ते है, किस वास्ते खर्च, जैसे माता किस लिए जो ही, तो बड़े संत खुश होए कि भाई ऐसी बात है तो पूछ लेते तुम आ जाते, नहीं तो मेरे को बुला लेते, तुम इधर संकोच क्यों किया, मेरे को कहते मैं आ जाता। तो उसने पूछा महाराज आप आज कैसे आए, तो बताया भाई ऐसे घोड़ा अड़ गया इस वजह आ गए, कहते घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना, मैं क्यों पूछो, तो संतों को घोड़ा अड़ जाए महाराज, सच्ची लगन होती है वो आना पड़ता है। तो संत कैसे आवे कि आपकी लगन अच्छी हो, केवल परमात्म तत्व की जिज्ञासा हो, तो उस जिज्ञासा को जानने वाले संत आ जाते। केवल लालसा हो भीतर कि मेरी प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, संसार से कैसे ऊंचा उठूं, कोई उपाय तो उपाय बताने वाले आ जाते। उनके पास और क्या है, संतों के पास क्या है, उनके केवल जीवों का कल्याण करना है, अपना उद्धार कर लिया, अब बाकी क्या रहा दुनिया का उद्धार। मैंने तो संतों से बातें सुनी है कि वे जब तक एक जीव भी बंधन में रहता है तब तक महाराज का संतों का काम पूरा नहीं होता। एक भी बंधन में कौन है, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी ना रहे, ऐसी उनकी दया होती है। तो जहाँ गुरु तत्व साधु दुरावहि आरत अधिकारी, जहाँ पावहि आरत अधिकारी मिल जाए तो संतों को क्या करा, मौज होगी, आनंद हो गया। देखो साधारण आदमी तो ऊंचे संतों को चाहते हैं, ऊंचे दर्ज पुरुष है, हमें हमारे ऊंचे मिले, हम अटकल लगाते हैं कि अच्छे महात्मा हमारे को मिले, और अच्छे महात्मा भी समझेगा हमारे को अच्छे मिले, वही चाहे भगवान ही मिले, अच्छे ही अच्छे मिले तो हमारे से कौन मिलेगा, तो संत महात्मा अच्छे मिलने नहीं है। कोई पूछने वाला मिले, कोई जिज्ञासु मिले, कोई भूखा मिले, कोई आर्त मिले, जिसकी इच्छा ऐसा कोई मिले, ऐसे वो ढूंढते रहते हैं। जैसे दुकानदार तो किसी ग्राहक को ही चाहते हैं, तो उनके कोई ग्राहक हो तो वे तो ग्राहक मिलने से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनका तो एक दुकान चलती है, ग्राहक दुकान कैसे चले। तो ऐसे संत महात्मा तो कृपा करने के लिए रात दिन तैयार रहते हैं, कृपा करने के लिए। तो इस वास्ते आपको अपनी अयोग्यता समझकर निराश नहीं होना चाहिए। स्वार्थ मिंद सकल जग माही, सुखने उपरू परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, हे तु रह जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक। भगवान और भगवान के प्यारे संत बिना स्वार्थ करने वाले, आप संतों को क्या दे सकते हो, भगवान को क्या आप निहाल कर सकते हो, इस चीज से उस पर कब्जा कर सकते हो, वे तो जैसे पपीहा होता है जल के लिए, ऐसे लोचन सात्र जिसके भगवान के लिए रहता है, कोई मिले ऐसा ऐसा, तो ऐसे संतों को तो ग्राहक मिलते। इस वास्ते ये जो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मनुष्य बना हुआ मुमुक्ष बना हुआ, अरे महापुरुष संशय ये दुर्लभ है, दुर्लभ अगम्यो अगमो से अभोग। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है महापुरुष तत्व के जीवन दुर्लभ है, और दूसरा पता अगम्य है, और फिर अमोघ महात्माओं का संग मिलना दुर्लभ है, क्योंकि संत बहुत कम हुए। भागवत महाभारत आदि के पढ़ने से मालूम होता है कितने राजा हुए, कितने तपस्वी हुए, कितने त्यागी हुए, तत्व के जानने वाले बहुत कम होते। सत्यु त्रेता द्वापर में ही तो कलयुग में तो और बहुत कम है, इस बार से दुर्लभ है, मिलते नहीं, और मिल जाए तो पहचान नहीं जाते। हम संतों को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। एक बात याद आ गई, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में हम सत्संग करते, 2000 से पहले की बात है, सत्संग करते थे, तो वहां एक सज्जन आए, एकांत में मेरे से पूछने लगे कि आप यहाँ रहते हो, परसों से आता हूँ मैं, तो महाराज यहाँ अच्छे कोई महात्मा हो बताओ, अच्छे महात्मा बताओ। भाई अच्छे महात्मा कहाँ से लाए कि आप बताओ। तो मैंने विरोध में कहा कि आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। कहते मैं अच्छे महात्मा को ढूंढना चाहता हूँ, उसका संग करूँ, ऐसे साथ महात्मा बताओ, वो आप बात समझ में नहीं आई। तो कहने लगे ये सुन तो लिया मैंने, मेरे समझ में नहीं आई बात। क्या बात समझ में? अच्छे मंदे महात्माओं की मैं परीक्षा कर सकता हूँ तो मेरा कितना ऊंचा दर्जा होगा? और वो मिल गया फिर दूसरे महात्मा क्यों ढूंढते हैं? महात्माओं को मैं परीक्षा कर दूं, महात्मा से ऊंचा ही महात्मा की परीक्षा कर सकता है। अरे आप एम ए बी ए इसकी परीक्षा तो दोनों से ऊंचा उठाई कर सकता है, मिडिल पास वाले कर लेगा पास परीक्षा। जब मेरे पर निर्भर करते हो तुम अच्छे महात्मा बताओ तो मैं कितने ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। अरे ऐसा मिल गया फिर आप बातों क्यों पूछते, मेरी अकल में नहीं आई बात। तुम्हारे महात्माओं की परीक्षा करने वाले का कितना ऊंचा दर्जा होना चाहिए आप भी सोचो। वो तो सबसे ऊंचा होगा ना, ये महात्मा है अल्पात्मा है विवेक करने वाला, तो इसकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, महात्माओं की परीक्षा नहीं कर सकते। महात्माओं की परीक्षा हम नहीं कर सकते तो कैसे होता है? एक राजा थे, एक कहानी हमने सुनी है कि राजा थे, वो जवान अवस्था में ही राजगद्दी पर विराजमान हुए, 5-7-10 वर्ष राज्य किया। राज्य करने पर उनका अच्छा राज्य रहा तो एक दिन बड़े बूढ़े अच्छे अच्छे आदमियों को प्रजा में से इकट्ठे किया, हो भाई आप बड़े बूढ़े हो, आपने बहुत देखा है, आयु पूर्ण करी है, तो जो बड़े बूढ़े वो कई परिस्थितियों में गुजरे हैं, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में तो भी बड़े जानकार होते हैं, बड़े बूढ़ों में अकल होती है विशेष, बहुत देखी सुनी हुई बात। तो उनको इकट्ठे होकर के इकट्ठे करके कहा कि आप बताओ, आप बड़े बूढ़े हैं, मेरे दादाजी का राज्य भी आपने देखा है और मेरे पिताजी का राज्य भी देखा है और मैं राज्य करता हूँ इसको भी आपने देखा है, बढ़िया राज्य किसका हुआ, श्रेष्ठ राजा कौन हुए ये बताओ। सुनने वाले चुप हो गए, वे कभी आप श्रेष्ठ हो कि हमारे माता पिता पिता दादा की निंदा कर दी, कहते आपके दादाजी अच्छे थे तो मेरी निंदा कर दी, आप बता जाए कौन करे ऐसा काम, आप बताइए। चुप थे बेचारे, अब बोले नहीं को कहते बोलो बताओ, तो आप लोग बूढ़े बूढ़े हो, तीनों राज्य देखा है, बताओ राज्य बढ़िया किसका हुआ। तो एक वृद्ध सज्जन बोले कि महाराज आपकी परीक्षा हम नहीं कर सकते, आपका राज्य बढ़िया है, पिताजी का राज्य बढ़िया है, दादाजी का राज्य बढ़िया हुआ, आप मेरी बात पूछे तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी जो परिस्थिति है मेरी अवस्था घटी हुई है देखी हुई वो बात बता सकता हूँ, आप लोगों की परीक्षा हम कैसे करें? आपसे ऊंचे राजा हो तो हमकी परीक्षा करें आपकी, हम तो आपकी प्रजा है, आपकी परीक्षा हम नहीं, हमारी बात पूछो तो मैं कह सकता हूँ, कैसे तुम बताओ। कि तुम्हारे दादाजी का राज्य था उस समय जवान था मैं, 25-20 वर्षों का था और मैं बलवान था, पहलवानी करता था और लाठी और सब जानता था। तो एक दिन मैं अकेला ही जंगल में जा रहा था, तो जंगल में जाते जाते मैंने सुना एक कोई स्त्री रो रही है, स्त्री की आवाज आई कि तो अबला कोई रो रही है, तो रोले मैं देखा कि कौन रो रही है, किसी को दुख हो तो चले, उसके पास गया तो चुप हो गई, डर गई वो, कहते बेटी डर मत, डरती क्यों है, बोल क्या बात है, ऐसा कह दो तो रो पड़ी। मैंने तो प्यार से स्नेह से बोला कि बेटी बहन तो रो मत, रोती क्यों है बता, तेरे क्या दुख है? तो कहने लगे पिताजी मैं अपने ससुराल जा रही थी, बैलगाड़ी थी, गाड़ी पर चढ़ी हुई थी, 2-4-5 आदमी थे, 1-2 ऊंट थे, हम जा रहे थे तो डाकू आ गए, डाकुओं ने महाराज लूटना चाहा तो उनके साथ लड़ाई हो गई, जब लड़ाई होगी तो उन लड़ाई में मैं वहां से भागी, जो जाकर जंगल में छिप गई कि मारेंगे, तो मैं तो छिप गई उन लड़ाई में, वो चले गए। अब वो हमारे साथी कहाँ गए कर पता हमारे गए नहीं, मैं जानती हूँ नहीं कि मेरा ससुराल कितना दूर रहा, पैहर कितना दूर रहा, किधर रास्ता है मैं जानती नहीं, अब मैं क्या करूं, ऐसे रोने लगी, मैं रोना आ गया। तो कैसा है? तो तुम्हारा नाम कौन सा है? ससुराल को काम कौन सा है? तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? तो उसने लिखकर बता दिया। तो वो सब तुम डरो मत, मैं पहुंचा दूंगा तेरे ससुर के घर, मैं पहुंचा दूंगा। तू मेरी बेटी है, कन्या है, तू डर मत। गहने थे महाराज बहुत उसके पास, बड़े बढ़िया हीरा पन्ना के जड़े हुए, सोने के गहने पहने हुए थे, बढ़िया कपड़े थे, ससुराल जा रही थी। तो वो ले गए, फिर आ जाओ मैं पहुंचा दूं, मैं जानता हूँ तेरे ससुर को, मैं जानता हूँ वो काम जानता हूँ, चलो। तो उसी साथ पहुंच गई। वे चिंता कर रहे थे कि हमारी बहू कहाँ गई, डाकू ले गए, छीन लिया, मार दिया, काट दिया, गहने बहुत थे, शायद कत्ल कर दियो डाकुओं ने। तो बड़ी चिंता हो रही थी। तो रात्रों में लेकर पहुंचे तो सब खुश हो गए, हमारी बहुत आ गई। उसको पूछा कि तुम्हारा किसने पहुंचाया? कि महाराज एक सज्जन मिल गए, वे मेरे यहाँ कर ले आए। तो वो समझ चली, वो भीतर चली गई। पूछा कि कैसे, क्या घटना हुई? तो मैं तो रो रही थी, अब कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कोई उपाय मेरे को दिखता नहीं, जानती हूँ नहीं कि वो गांव किस तरफ है। तो मेरी आवाज सुन करके वो आ गए और तो मेरे को बड़े प्रेम से आदर से यहाँ पहुंचा दिया। तो उन लोगों ने सुना तो कहे भाई बड़ा सज्जन का काम किया, तो 100-200 रुपया देने लगे, ये रुपया ले लो, आपने बड़ा काम किया। हमारी बड़ी चिंता हो रही थी कि डाकू नंदन कत्ल कर दिया हो, गहने कपड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने थे, तो आपने ठीक किया। तो 100-200 रुपया देने लगे, मैंने लिए नहीं, कि मैं रुपयों के लिए नहीं लाया हूँ, कुछ रुपये मिल जाए इस आशा से नहीं लाया हूँ, मेरा तो भाई किसी का उपकार हो जाए, कोई अबला बिचारी रो रही है तो घर पहुंच जाए, उपकार इस उपकार की दृष्टि से लाया हूँ। मैंने कुछ नहीं लिया और मैं बड़ा प्रसन्नता से अपने चल दिया कि भगवान की कृपा से किसी की सहायता हो गई मेरे द्वारा। तो ऐसे प्रसन्न हुए महाराज। इसके बाद कई वर्ष बीत गए तो कुछ मेरे घाटा लग गया, पैसों की जरूरत रही। तो मन में आने लगी कि वो स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता वो गिना सब दे देती, आज ये दरिद्रता क्यों भोगनी पड़ती? ये पिताजी के राज्य में, आपके दादाजी राज्य में तो ये हुआ। पीछे ऐसी मन में आने लगी कि वो हाथ में आई हुई रकम मैं मुफ्त में छोड़ दी, वो प्रसन्न होकर देने लगे 100-200 रुपये भी नहीं लिए। आज ये तंगी आ गई, अगर ऐसा करता तो बड़ा अच्छा रहता, ऐसी आने लगी। और तब तो महाराज मैं तो बूढ़ा हो गया, आप जवान हो कहते हो, मेरे को संकोच होता है, तो आपने पूछ लिया तो कहना पड़ता है। किसको धमका कर स्त्री बना लेता तो खूब काम करती, भोजन करा देती, सब काम हो जाता, ऐसी वृत्तियां मेरी होने लगी। अब पछताता पता है उसका, तो मैं मेरी बात कह सकता हूँ, आपकी बात क्या कहूँ? तो कह दिया सब कुछ अपने दिल से। ऐसे संतों की परीक्षा करना हम कैसे करें? अब संतों की परीक्षा हम कैसे करें? संतों से ऊंचे हो तो संतों की परीक्षा करें, तो संतों की हम अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि जिनके संग से हमारी शंकाओं का समाधान होता है, बिना पूछे भीतर की शंकाओं का समाधान हो जाए, और जिनके मिलने से शांति मिलती है, भगवान की तरफ हमारी रुचि होती है, भगवंत भजन में रुचि होती है, देवी संपत्ति आने लगती है, आसुर संपत्ति दूर होने लगती है जिनके संग से, तो हम ऐसे अपनी परीक्षा कर सकते हैं। संतों की परीक्षा क्या करें हम? तो अच्छे जहाँ संत मिलेंगे उनमें संग करने से लाभ होता है। तो महत्संग दुर्लभ हो अगम्य और अमोघर से दुर्लभ है, पहचान नहीं जाते। पहचान हम कैसे करें? अपनी पहचान होती है। तो सज्जनों, जहाँ आपको संतोष हो, आपकी शंकाओं का समाधान हो, आप में देवी संपत्ति आने लगे, आज संपत्ति दूर हो जाए, शांति प्रसन्नता बढ़ने लगे, भगवान की आस्थिता, भगवान पर विश्वास बढ़ने लगे, जिन संग से वो संग तुम करो। वे संग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं इसका तो पता नहीं लगता, हम कैसे परीक्षा करें? परंतु हमारे लिए अच्छे हैं, हम पढ़ने को जावे तो हमारे को पढ़ा सकते हैं। वे कहाँ तक पढ़े हुए हैं ये हम परीक्षा नहीं कर सकते, परंतु हमारे को पढ़ा सकते हैं ये तो परीक्षा कर ही सकते हैं। हम नहीं जानते वो बात बता सकते हैं, तो पढ़े हुए हैं हमारे से अधिक है, वहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ने के बाद उनसे और पढ़े हो जाएंगे। लोग बहुत से कहते हैं अच्छे महात्मा नहीं मिले, अच्छे महात्मा मिले तो हम सत्संग करते, तो अच्छे महात्मा मिले तुम्हारे आज तक मिले हैं उनसे जो बातें गई वो पूरी पालन कर लिया, वो अध्ययन हो गया, वो पढ़ाई पूरी हो गई? क्या तो पूरी तो नहीं हुई, तो फिर अच्छे महात्मा मिले क्या करेंगे? अभी तक मिले हैं, उन्हें बताई वो भी काम में नहीं ला सके तो ऐसे मत में क्या करेंगे। तो ये भगवान का कृष्ण मंदिर जगत गुरु वो प्रधानाध्यापक है, हेडमास्टर है भगवान। तो आपकी जितनी पढ़ाई हुई आगाड़ी प्रबंध भगवान करते हैं। जैसे अन्न वस्त्र जल का प्रबंध है, ऐसे भगवान के दरबार में भजन करने वालों का भी प्रबंध है। उनके लिए जैसा गुरु चाहिए वे पहुंचा देते हैं। तो भगवान की कृपा से संत मिल सकते हैं और संत भी कृपालु मिल सकते हैं। और हमारी प्रकृति के अनुसार हम कर्म योग का अनुष्ठान करें, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, रज योग, मंत्र योग, कई तरह के योग है, तो इसलिए से हम कर सकते हैं। ऐसे आप और हम विचार करें, अपने को अयोग्य समझकर निराश न होए। खास बात ये कहना है, अपने में कोई योग्यता नहीं है। अरे भाई अयोग्य होता है उसके लिए योग्य आ जाता है, अरे योग्य अयोग्य के लिए होता है। इस वास्ते बिना आप कभी हिचकिचाहट बिना के भगवान में लग जाओ और आपका प्रबंध भगवान करते हैं और जो आपके लिए उचित है संतों को मिला देंगे। इस वास्ते प्रभु कभी भी भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। सांसारिक उन्नति तो पूर्व भाग्य से होती है और ये परमात्मा की प्राप्ति केवल लालसा से होती है, वर्तमान की लालसा। आप पहले कैसे ही रहे हो कोई परवाह नहीं, केवल भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत करो, फिर भगवान सब प्रबंध कर देते हैं। इस वास्ते कभी भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। साधु नारायण 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 नारायण।